ओम शांति। जो पीछे बैठे हैं लगता है रूट के बैठे हुए आप, एसी नहीं है, एसी नहीं लग रही, लगाया है। दो दिन से मेडिटेशन के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस भी किया, राइट? तो मेडिटेशन करना आ गया, यहां आ जाइए, वैसे बीच में आ जाइए। मेडिटेशन करना आया है, अभी समझ में आया है, भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना? हाँ, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी करना शुरू किया है, एकदम से पूरा परफेक्ट तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए करते करते वो फिर वो समझ में आएगा कैसे करना है। तो प्रैक्टिस से अनुभव, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, फिर और गहराई से समझ में आने लगता है, है ना? तो लेकिन बेसिक जो है मेडिटेशन करने का, वो तो आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना? तो लेकिन सबसे पहली बात ये है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, राइट? वो अगर समझ में आएगा, आ जाएगा ना, तो फिर सारी बातें फिर और समझ में आने लगता है। तो क्यों करना चाहिए मेडिटेशन? अपने एनर्जी को, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, और आप, मैं कौन हूं, अपने बारे में ज्यादा समझने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए और पीस के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, अपने ओरिजिनल गोल में स्थित होने के लिए। ये सब बातें राइट है। अल्टीमेट गोल जो मेडिटेशन का है वो है संस्कार परिवर्तन, है ना? जो हमारे निजी संस्कार है, पॉजिटिव संस्कार है, वो हमारा नेचुरल बन जाए, मेहनत ना लगे उसमें। जैसे गुस्सा, अगर फ्रस्ट्रेशन आता है तो थोड़ा बहुत जो भी नेगेटिविटी वेस्ट है संस्कार अभी तक, तो वो हम जब अल्पकाल के प्रभाव के कारण से वो दब जाते हैं, राइट? यहां आए आप, इतना सुंदर वातावरण, पॉजिटिव पावरफुल वातावरण, तो इसमें आपका नेगेटिव संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके कारण से वो दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसे परिस्थितियां आई, किसी ने कुछ बोला किया, तो वो जो संस्कार है ना, वो पॉप अप हो जाता है। तो जब पॉप अप होता है तो हमें समझ में आता है अभी तक वो संस्कार गया नहीं है, है ना? तो फिर उस पर पुरुषार्थ करने की जरूरत है। हाँ, इस संस्कार को मुझे निकालना है। जो निकालते निकालते, निकालना माना नेगेटिव संस्कार को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, है ना? परिवर्तन करते करते पॉजिटिव संस्कार मेरा इतना नेचुरल हो जाए, परिस्थितियां कैसे भी विकराल आए, लेकिन मेरा पॉजिटिव संस्कार ही बाहर निकले। अभी हम तो शांत रहते हैं, लेकिन गुस्सा कब होता है? किसने कुछ बोल दिया अचानक, वो बोल के नहीं आते, राइट? परिस्थितियां जो आती है वो बोल के नहीं आते। एग्जाम पेपर, तो एग्जाम्स जब होते हैं तो फिर एग्जामिनेशन डेट टाइम सब कुछ वो निर्धारित होता है कॉलेज और स्कूल्स में, वो कौन से पेपर कौन से तारीख को है, तो पूरी तरह प्रिपेयर करके जाते हैं स्टूडेंट्स वहां, तो क्योंकि एग्जाम। लेकिन लाइफ में एग्जाम कब आएगा नहीं है, अचानक एग्जाम आता है कि आज सवेरे तो बहुत अच्छा मूड था, अच्छी तरह मेडिटेशन किया, लेकिन जैसे ही कॉलेज में गए कुछ न कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, कुछ अचानक आ जाता है, बोल के नहीं आते हमारे पेपर्स, है ना। तो वो है हमारे क्वेश्चन पेपर, उसमें अगर हम पास हो गए ना तो फिर नेक्स्ट हमारे चैलेंजेस, जैसे स्पिरिचुअल पाथ में क्या होता है, आध्यात्मिक पथ पर जब चलना शुरू करते हैं एग्जामिनेशन बढ़ता जाता, अलग होता जाता है। एक एग्जाम पूरा किया दूसरा आएगा, दूसरा पूरा किया तीसरा आएगा। अगर गुस्से वाला मैंने पास करना शुरू किया थोड़ा ग्रीड का आएगा, ग्रीड का पास करना शुरू किया कुछ और आएगा, है ना। तो हर एक चीज को समझते हुए मुझे उसको पार करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो एजुकेशन है, या सत्संग हम नहीं कहते हैं इसको, ये है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन में क्या होता है, हर रोज पढ़ना पड़ता है, हर रोज उसका अभ्यास करना पड़ता है एजुकेशन में, और लाइफ पे एजुकेशन है पूरी तरह। इसलिए हम यहां कहते हैं जुक जुक मरमर सीख सीख, जब तक जीना है तब तक सीखना है ना, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ताकि फिर हम वो आत्मा को फ्लरिश कर सकते हैं, आत्मा को वो नरिश कर सकते हैं। तो सीखते रहने की जरूरत है। तो फिर एग्जाम्स तो आएंगे, लेकिन फिर उस अनुसार जब हम सीखते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो नेचुरल संस्कार, पॉजिटिव संस्कार वो नेचुरल हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है, है ना। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो शांति तो मिलेगी लेकिन शक्ति भी मिलती है, वो शक्ति के कारण से फिर कर्मों में परिवर्तन, क्योंकि समझ आ गई ना, ज्ञान समझ में आ गया कैसे मुझे व्यवहार करना है। यह आध्यात्मिकता अलग और अपना निजी जीवन अलग नहीं है, ये सब कुछ कंबाइंड है, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता है, टेंपल में जाएंगे या जो भी भक्ति करते हैं वो जीवन अलग है, प्रोफेशन में गए वो अलग है, नहीं होता ऐसे। जो भी जहां भी जाएंगे आपके मन मनसा मनोदिशा को आप ले जाएंगे ना, अपने एटीट्यूड्स को ले जाएंगे, अपने थिंकिंग को आप ले जाते हैं। तो जब आध्यात्मिकता को अपनाएंगे तो लाइफ की समझ हमें गहराई से समझ में आने लगता है। सुपरफिशियल से नहीं देखते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं देखते हैं, लेकिन गहराई से समझ में आने लगता है कि यह अगर घटना घट रही है क्यों हो रहा है, कहां से उत्पन्न हो रही है, है ना। वो गहराई से जब समझ में आने लगता है तो हम उसके जड़ों को हम ठीक करते हैं, केवल पत्तों को पानी नहीं डाल रहे हैं लेकिन जड़ों को हम पानी डाल रहे हैं, जड़ों को ठीक कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसको ईगो बहुत है, राइट। अगर मुझे ईगो बहुत है, वो दिख रहा है मेरे हाव भाव में, बिहेवियर में, बोल में, वो सब कुछ ईगो दिख रहा है, ईगो बहुत है, ज्यादा है, वो ईगो क्यों है। ईगो बाय इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, ईगो के गहराई में इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी के कारण से मुझे वो ईगो, कहीं ना कहीं कमजोरी है आत्मा का, उसको कवर अप करने के लिए वो शील्ड हम लोग पहनते हैं ताकि वो मुझे मेरा वो निजी जो कमजोरी है वो दिखाई न दे, तो फिर वो ईगो के रूप में वो दिखाई देने लगता है। ईगो किस जिसके पास भी है, ईगोइस्ट व्यक्ति जो भी है वो अंदर से खोखला होता है, अंदर के खोखलेपन को छिपाने के लिए वो बाहर का शील्ड होता है वो, राइट। तो ईगो को ठीक करने के बजाय खुद को, आंतरिक जो आत्मा को वो भरपूर करते जाए तो ऑटोमेटिकली वो ईगो ठीक हो जाता है ना, ऐसी बातें। तो निजी तो आत्मा को हील करना शुरू करते हैं, भरपूर करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाता है ना। तो और हमें नेगेटिव संस्कार को निकालने में मेहनत नहीं करना चाहिए। जैसे इस कमरे में अगर अंधेरा है, अंधेरे को मिटाने के लिए क्या करेंगे, लाइट लगाएंगे, ट्यूबलाइट लगाएंगे, दिया जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, जो भी है ना, प्रकाश ले आएंगे किसी ना किसी रूप से, अंधेरा भाग जाता है। या फिर खिड़की खोल देंगे, सनलाइट को अलाव करेंगे, तो फिर अंधेरा चला जाता है। अंधेरे को भगाने की मेहनत नहीं करते हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं यहां भी, लाइट को लाने की मेहनत कर रहे हैं, तो फिर अंधेरा ऑटोमेटिकली भाग गया। ऐसे ही नेगेटिविटी जो है वो अंधेरा है, पॉजिटिविटी जो है वो प्रकाश है, लाइट है। तो अभी मुझे नेगेटिविटी को निकालना है, जैसे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ईगो है, जो भी नेगेटिविटी है उसको मुझे रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर वो है नेगेटिविटी, मुझे उसको निकालना है। अगर मैं बार बार सोचूं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो क्या होगा और क्या होगा, और गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्से को हम एनर्जी दे रहे हैं, राइट। अंधेरे को एनर्जी दे रहे हैं, गुस्से को एनर्जी दे रहे हैं, तो गुस्सा बढ़ेगा, राइट। तो उसको भगाने के लिए क्या करना होगा, उसका ऑपोजिट जो लाइट है, अंधेरे का ऑपोजिट लाइट है, गुस्से का ऑपोजिट क्या है, शांति है, राइट, पीस है। जितना हम अपने अंदर शांति की शक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि शांति जो है आत्मा का ओरिजिनल गुण है, राइट। तो आत्मा का ओरिजिनल गुण होने के कारण से उसको अनुभव करना इजी है। तो बार बार मैं उसको अनुभव करना शुरू करूं, आत्मा के अंदर उसके परसेंटेज को बढ़ाती जाऊं, शांति के परसेंटेज को बढ़ाती जाऊं, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा निकल जाएगा, गुस्सा हील हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उस पर हमें मेहनत करना है, शांति। और जैसे आत्मा के 7 गुण हैं और 8 शक्तियां हैं, राइट, ये समझ में तो आ गया है। इस पर हमें मेहनत करना है अभी, आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण और 8 शक्तियां। जब इन गुणों को मैं भरती जाऊंगी, उसके अपोजिट जो नेगेटिविटी है वो मिटता जाएगा, है ना। जैसे शरीर में पानी की मात्रा अराउंड 73-75% पानी है, पानी की मात्रा कम होता है तो प्यास लगती है। पानी के लेवल इस शरीर में उस तक रखना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, बॉडी के हेल्थ के लिए। ऐसे ही आत्मा के हेल्थ के लिए इन 7 गुणों के जो परसेंटेज है ना, वो 80% से ऊपर रखना बहुत जरूरी है, ताकि फिर उन गुणों के आधार से हम अपना कर्म कर रहे हैं। अगर वो मात्रा कम हो गया तो फिर नेगेटिविटी में वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे शांति की मात्रा कम हो गया तो क्या बढ़ेगा, अशांति, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में सारा कुछ, है ना। तो वो सारी बातें बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां शांति न होने के कारण से सहन भी हम नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसलिए शांति की मात्रा बढ़ाने से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उसके कनेक्टेड जो भी कमी कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे से मिटता जाएगा। और नेक्स्ट गुण है प्रेम, प्यार, स्नेह। स्नेह की शक्ति कम होता जाएगा तो स्नेह की मात्रा कम होगा होती जाएगी तो क्या होगा, नफरत, ईर्ष्या, जलसी, नफरत, यह सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए नफरत कम करने के लिए उस पर मेहनत नहीं करना है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति मेरा नफरत है ना, वो नहीं करना है उस पर तो, लेकिन मैं अपने प्यार के, स्नेह की शक्ति बढ़ाती जाऊं हर आत्मा के प्रति, अपने प्रति स्नेह की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो फिर हेट्रेड, जो नफरत है, ईर्ष्या है, वो कम होता जाएगा। और फिर नेक्स्ट है सुख, है ना, सुख की मात्रा कम होता जाएगा तो दुख बढ़ता जाएगा। दुख बढ़ेगा, दुख कैसे बढ़ता है, दुख कैसा बढ़ता है, छोटी छोटी बातों को हम पकड़ते जाते हैं, है छोटे से दुख, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये हो गया, हम सुख पर ज्यादा ध्यान ना दे करके छोटे छोटे जो दुख है ना उसको पकड़ते जाते हैं, उसको पकड़ने के कारण से फिर दुख की मात्रा बढ़ता जाएगा, सुख की मात्रा कम होता जाएगा। जब मैं सुखी हूं, सुख स्वरूप हूं, मुझ आत्मा का निजी गुण सुख है, हैप्पीनेस है, सुख है, तो फिर वो दुख जो भी बातें आती है ना इग्नोर करते जाएंगे, उसको ज्यादा हम वजन नहीं देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे दुख की बातों को, सुख की बातों को ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते जाएंगे तो सुख की मात्रा बढ़ता जाएगा। और पवित्रता की कम होती है तो पवित्रता की शक्ति कम होगा तो ऑनेस्टी कम होता, हेराफेरी, थोड़े बहुत मैनिपुलेशन, बोल, जो मेरा सोच, बोल और कर्म में हार्मनी नहीं रहेगा, मैं बोलूंगी कुछ करूंगी कुछ, लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू करूंगी, हेराफेरी, जो बहुत सारी बातें, यह सब मैनिपुलेशन जब हम करेंगे लोगों को तो पता चल जाता है ना, तो वो साफ सफाई नहीं रहेगा रिलेशनशिप में, वो जो ट्रस्ट बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाता है ना। तो प्यूरिटी की मात्रा जब बढ़ता जाएगा वो फिर साफ सफाई, हर चीज की साफ सफाई बढ़ता जाएगा, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सब बातें बढ़ती जाएगी, है ना। और नेक्स्ट है ज्ञान, है ना, ज्ञान की शक्ति कम होता है तो ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, दुनियावी ज्ञान नहीं, सब्जेक्ट ज्ञान नहीं, वो तो है, वो तो ठीक है, वो तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से हमें अपडेट तो करना ही चाहिए, वो तो अलग बात है। या ज्ञान जब हम कह रहे हैं वो है आध्यात्मिक ज्ञान, समझ, लाइफ के बारे में समझ, है ना। तो वो समझ अगर कम है तो क्या होगा, मिसकंसेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रॉन्ग डिसीशंस, बहुत सारी बातें बढ़ती जाएंगी। या आध्यात्मिक ज्ञान, खुद के बारे में समझ, है ना, ये सृष्टि ना पूरे कर्म के बारे में समझ जो भी है, तो ये इसके बारे में समझ बढ़ता जाएगा, तो फिर मिसकंसेप्शंस, इग्नोरेंस, कहीं तो कभी कभी कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन कई बार इग्नोरेंस ब्लिस नहीं होता है, समझ होना बहुत जरूरी होता है लाइफ के बारे में, नहीं तो फिर धोखा खाते रहते रहेंगे, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कौन सा छोटा, शांति, सुख, खुश हो गया ना, खुशी माना सुख हो गया ना, शक्ति, शक्ति की कमी होगी तो कमजोरी, किस चीज की कमजोरी? आत्मिक कमजोरी, डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा जो हमें करना है, लेकिन उसमें डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा। हाँ, सोचते हैं सुबह उठ करके ये करना है, लेकिन करते जाए तो फिर वो डिटर्मिनेशन नहीं है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, लगातार करने की आदत चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो ये सारे शक्ति के साथ आता है। जितना आत्मिक शक्ति बढ़ता जाएगा, अष्ट शक्तियां तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ साथ हिम्मत और दृढ़ता वो बढ़ता जाएगा, और फिर सत्यता की शक्ति बढ़ती जाएगी। क्योंकि सत्यता की शक्ति जब बढ़ती जाएगी तो फिर हम जो भी, क्योंकि जो भी हम कर्म करने कर अच्छा कर्म करते जाएंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे, तो सामना तो करना पड़ता है, राइट? तो सामना करने के लिए वो ताकत चाहिए। तो नेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है सोसाइटी में, अभी समाज में, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए भी तो हमें शक्ति चाहिए होता है। तो इसीलिए आत्मिक शक्ति जितना बढ़ता जाएगा, ये सारी बातें बढ़ती जाएगी, है ना? ये छह गुण को तो हमने देखा अभी, हो गया ना छह गुण। और सातवा है आनंद, ब्लिस। तो ब्लिस का कोई अपोजिट नहीं है, आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। जैसा हर गुणों का अपोजिट है, गुस्सा शांति, दुख सुख, शक्ति निशक्ति, कमजोरी, है ना, पवित्रता अपवित्रता, ये सारे अपोजिट है। लेकिन आनंद का कोई अपोजिट है? अपोजिट नहीं है, वो टोटल ब्लिस है। इसीलिए जो भी संत होते हैं ना, उनके पीछे क्या आनंद होता है, सत्यानंद जी, परमानंद जी, सब उनके नाम के पीछे आनंद शब्द क्यों ऐड होता है? दैट इज अवर अल्टीमेट गोल, आनंद की स्थिति, परमानंद की स्थिति, वहां टोटल ब्लिस है। और कर्म टोटल ब्लिस बना, परमानंद की स्थिति क्या है वो? तो शरीर से जो हम सुख पाते हैं ना, जो हम देखते हैं उससे हम सुख पाते हैं, जो खाते हैं उससे सुख पाते हैं, ये कर्मेंद्रियों का सुख है, इंद्रियों का सुख है ये, है ना? ये परमानंद की स्थिति है, वो है अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का चरम सीमा तक, जो पूरी तरह अल्टीमेट जो आनंद की स्थिति होती है वो है, उसका कोई अपोजिट नहीं है। तो जब हम आत्माएं संपूर्णता के ओर जाते जाएंगे, माना नेगेटिविटी कम होता जाएगा, नेगेटिव संस्कार कम होता जाएगा, पॉजिटिव गुण, सातों ही गुणों की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो फिर वो परमानंद की स्थिति हम अनुभव करना शुरू करते हैं। जब वो स्थिति हम अनुभव करना शुरू करते हैं ना, तो फिर ये सारी जो दुनिया की चीजें नश्वर लगने लगता है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उन चीजों का। इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य हमें जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है, अरे मुझे ये नहीं करना, ये जबरदस्ती लाएंगे तो वो फोर्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो भरपूर होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा। यहां भरपूर नहीं है ना हम, तो इसीलिए अभी तक हम आकर्षित हो रहे हैं। जैसे फल है, फल पक रहा है झाड़ में, पकते पकते पूरी तरह जब पक जाता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो गिरेगा झाड़ से, अलग हो जाता है। जब तक वो पूरी तरह पका नहीं है तब तक वो जुड़ा हुआ है पेड़ के साथ, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है पकने के लिए। जब तक वो पूरा हो गया, अभी जरूरत नहीं है मुझे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो अलग हो जाएगा, वो भरपूर हो गया ना, ऐसे ही जब मैं आत्मा भरपूर हो जाऊंगी तो यहां से मेरा वैराग्य ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है, वो टेम्पररी हो जाएगा। जबरदस्त ये मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, तो फिर एक दो दिन तो हो जाएगा लेकिन तीसरे दिन फिर से वहां आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए इसके बजाय आत्मा को भरपूर हम कहां से करेंगे? आत्मा तो अभी खाली है, कलयुगी कलयुग का समय चल रहा है तो आत्मा तो अभी खाली है, राइट? तो अभी भरना पड़ेगा। अभी भरना कहां से है? अभी जब तक मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो हम कहां से भर रहे थे? लोगों से। मुझे प्यार दो, सम्मान दो, रिकॉग्निशन दो, ये दो वो दो, हम लोग लोगों से मांग रहे थे। इसीलिए अटैचमेंट इन लोगों के साथ था, क्योंकि मेरे प्रोफेशन के साथ अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि वहां से मुझे सम्मान रिकॉग्निशन मिल रहा है। लोगों के साथ क्यों? मुझे प्यार मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो यहां से लेकर के मैं आत्मा को भरपूर कर रही हूं, क्योंकि मैं आत्मा खोखली हूं, खाली हूं, तो यहां भर रही हूं यहां से। लेकिन अभी मुझे जब समझ में आया है कि ये लोग मुझे भर नहीं सकते, क्यों नहीं भर सकते? उनके पास खुद नहीं है ना, उनके पास मुझे प्यार चाहिए, उनको ही प्यार चाहिए, तो वो कहां से देंगे मुझे प्यार, राइट? तो उनके पास खुद नहीं है तो फिर मुझे क्या देंगे प्यार, राइट? तो कलयुगी दुनिया में अभी सभी का अभी स्थिति क्या हो गया पता है? जैसे चांद को देखते हैं, पूनम के चांद कैसा होता है? भरपूर पूरा, है ना? अमवास, अमवास के पहले वाला एक लाइन होता है, राइट? तो जब हम सतयुग में थे आत्माएं भरपूर थी, सब गुण और शक्तियां 100% था। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो गया है? अमवास के पहले वाला एक डंडी रह गई है, 2%, 3%, 4%, 5% हमारे पास गुण है, 95% एम्प्टी है हम अभी, राइट? 95% एम्प्टी है, हरेक का हरेक की स्थिति ऐसी है अभी। तो जो 95% खाली है तो मुझे भरना है 95%, मुझे इससे चाहिए, इससे चाहिए, इससे चाहिए, वो खुद 5% है तो मुझे 95% कहां से देगा वो, है ना? तो इसीलिए आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप क्यों हो रहा है? वो ऑनेस्टी एक व्यक्ति के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति से मुझे केवल 2% मिल रहा है, अभी तक 90% खाली है, तो मुझे कहीं से तो भरना है। तो वो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं है एक रिलेशनशिप से, वो भरपूर नहीं हो रहा है, लोगों से मेरा भरपूर नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना है? किसके पास भरपूरता है? केवल परमात्मा है जो सागर है, केवल 100% की बात नहीं, वो सागर है, अनलिमिटेड है, बेहद है, जितना भरना चाहे और जितने लोग भी भरना चाहे, हजारों लाखों करोड़ों इस धरा पर जितने भी लोग हैं एक साथ परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे और डाउनलोड करेंगे परमात्मा से, तो भी वो खाली नहीं होंगे, राइट? इतना भरपूरता है परमात्मा के अंदर, राइट? तो मुझे जो भी चाहिए वहां से ले, वहां से डाउनलोड करें, वहां से लेंगे। प्यार चाहिए, परमात्मा का प्यार अनुभव करिए। रेस्पेक्ट चाहिए, स्वमान का अभ्यास करें, मैं आत्मा कौन हूं, परमात्मा को मैं कौन हूं, परमात्मा की संतान हूं। सेल्फ रेस्पेक्ट जब बढ़ाते जाएंगे तो मुझे दूसरों से रेस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो जो भी चाहिए परमात्मा से जब हम अनुभव करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भरते जाएंगे। तो फिर
हम देने की स्थिति में रहेंगे, लेने की स्थिति में नहीं। समझ में आया? हम देने की स्थिति में है अभी, परमात्मा से ले रहे हैं, और जिनको भी शांति चाहिए, आत्मिक स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ हम देते चले, लेकिन आत्मा को जो भी चाहिए वो परमात्मा से लेते हुए संसार को दे, है ना? ये अभी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना? लेना है, हमें भी चाहिए ना, आत्मा को चाहिए, लेना है, लेकिन कहां से लेना है? परमात्मा से लेना है, और लोगों को, लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, परमात्मा से भरते जाना है, कांस्टेंट सप्लाई। और वहां टाइमिंग्स नहीं है भाई, 9 से 5 है उसको, उनको परमात्मा का ऑफिस केवल 9 से 5 खुला है, रात को आवश्यकता है इमरजेंसी में कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, 24/7 वो तो खजाना खुला हुआ है, जब चाहे और जो चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक घंटा ये मिलेगा, दूसरे घंटे में ये मिलेगा, नहीं, जब चाहे जो चाहिए उस अनुसार फिर आप कनेक्ट होकर के वो अनुभव आप कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? तो ये बहुत सुंदर मिल गया ना आपके भरपूर होने के लिए लाइफ में, तो लेकिन केवल इसमें विश्वास की बात है बस। जितना हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, और विश्वास कैसे बढ़ेगा, कभी कभी लगता है ना कि इतना इजी है ये, इतना इजी है, हाँ इतना इजी है, हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। लोगों को लगता है कि भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है, वो इतना हाइप करके रखा हुआ है ना, भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, इजी है। क्यों इजी है, क्यों इजी है, आप बताइए क्यों इजी है? हाँ, हम उनके संतान हैं, संतान हैं। आप अपने पापा को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत है, अपॉइंटमेंट की जरूरत है नहीं। अगर भले वो प्रेसिडेंट है, कंट्री के प्रेसिडेंट है, लेकिन लोगों, दूसरों को अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पिता है, मेरी माँ है, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल, ही और शी इज अवेलेबल, क्योंकि वो संबंध है मेरा, है ना? दुनिया वालों के लिए वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए कौन है? पिता है, है ना? उस एक संकल्प की धुरी पर है बस। हमेशा परमात्मा ये कहते हैं, मैं केवल एक संकल्प की दूरी पर हूं, बस आपने याद कर लिया मैं हाजिर हूं, कनेक्शन जुड़ जाता है ना। कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? केवल याद से, बस कोई और चीज करने की जरूरत ही नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड जो किया है कि भक्ति करना है, उपवास करना है, इतना तपस्या करना है, तब जाकर के भगवान मिलेंगे, नहीं, केवल प्यार से याद करो, हे मेरे बाबा। यहां बाबा शब्द यूज करते हैं ना, क्यों बाबा? कोई बाबा मना ऐसा कोई बाबा नहीं है, लेकिन बाबा शब्द क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि पिता है, पिता को प्यार से हम पापा कहते हैं, डैड कहते हैं, जो भी है ना अलग, तो यहां बाबा कहते हैं क्योंकि वो पिता है हमारा। जब हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो प्यार हमारा एक्सप्रेस होता है कि वो मेरा पिता है। तो जब प्यार से हम याद करते हैं, कनेक्शन जुड़ जाता है, और फिर वो अनुभव होना शुरू हो जाता है, राइट? तो अभी परमात्मा क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, किस किस में मदद ले सकते हैं, किस किस में मदद नहीं ले सकते हैं आप? हाँ, काम तो हमें करना है, राइट? अगर मान लीजिए मेरा रिलेशन मेरे फ्रेंड के साथ बिगड़ गया है, एकदम बहुत ज्यादा बिगड़ गया, बहुत नफरत, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अभी मैं बोलू हे भगवान मेरा ये संबंध ठीक कर लो, वो बैठ के ठीक करेंगे? ठीक करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? Why? Why do we have to do it on? हाँ, क्योंकि जो भी हुआ है मेरे जीवन में किसके कारण से हुआ है, कौन है कारण? मेरे लाइफ में जो भी हुआ है बचपन से लेकर के अब तक, चाहे किसी किस घर में जन्म लिया है तब से शुरू हो जाता है, राइट? वो चूज मैं खुद करती हूँ, राइट? आत्मा के कर्मों के आधार से ये चूज हो जाता है किस घर में वो जन्म लेंगे, राइट? मात पिता कौन बनेंगे, तो वहां से शुरू होता है मेरा कर्मों का हिसाब किताब। तो जो भी हुआ है इस जन्म में, इस जीवन में, उसका कारण कौन है? मैं खुद हूं। नो वन इज टू ब्लेम, इसके कारण से मेरा ऐसा हो गया, नहीं। सबसे पहले हम अपनी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, कोई भी कारण नहीं है मेरे कंडीशन ऐसा होने के लिए, मैं खुद हूं रिस्पॉन्सिबल। जब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, ये रिलेशनशिप जो बिगड़ा हुआ है उसके लिए भी कारण कौन है? मैं खुद हूं। भले उन्होंने कुछ भी बोला है लेकिन कारण मैं खुद हूं जो बिगड़ने के लिए, राइट? रायता मैंने फैलाया है, साफ कौन करेगा? मैं कहूं रायता वो साफ करे, होगा? नहीं, साफ भी मुझे ही करना पड़ेगा, राइट? तो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे ही ठीक करना है। तो लेकिन मदद जरूर करेंगे परमात्मा, कैसे मदद करेंगे? वो मुझे समझ देंगे कैसे करना है, है ना? जब मैं बाबा से कनेक्ट करती हूं, मुझे बाबा मार्ग दिखाइए, दिशा दिखाइए कैसे करना है। तो जब मैं ऐसे कनेक्ट करके मैं बात करती हूं परमात्मा के साथ, मुझे गाइड करते हैं, ये करो, ये करो, ऐसे करो। तो जब गाइडेंस मिलता है तो उस अनुसार जब हम करने लगते हैं तो फिर वो ठीक होगा, है ना? गाइडेंस देते हैं ज्ञान के आधार से और समझ के आधार से, समझ भी देते हैं ज्ञान भी देते हैं, तो लेकिन करना मुझे है। तो उस रीति से हर क्षेत्र में, हर एरियाज में वो गाइड करने के लिए मेरा साथी है। तो वो गाइड के रूप में हमेशा परमात्मा को लेके चलते हैं, तो आप देखना कि आपका जो लाइफ है तो बहुत सुंदर बनता जाएगा उनके अनुसार। इसलिए बाबा के हम कहते हैं परमात्मा के श्रीमत अनुसार चले तो हम सेफ हैं, मनुष्यों के मत के अनुसार नहीं, परमात्मा के मत श्रीमत है, उनके डायरेक्शन है, उनके डायरेक्शन के अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं तो फिर हम सेफ रह सकते हैं। इसीलिए रामायण में प्रसंग आता है ना, जब वनवास में गए थे श्री राम और फिर लक्ष्मण रेखा लगाना पड़ा, सबसे पहले तो वो आवाज सोने की हिरण को देखा था सीता जी ने, हिरण को देख करके आकर्षित हुए तो कहा कि मुझे वो चाहिए, हिरण चाहिए, चाहिए। राम जी कह रहे थे कि नहीं, वो तो इल्यूजन है, वो भ्रांति है, वो सोने के हिरण नहीं है। फिर भी जिद में थे कि नहीं मुझे चाहिए, वो कितना खूबसूरत है, चाहिए। तो श्री राम उनको ठीक बना, उनको संतुष्ट करने के लिए कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, लक्ष्मण यहाँ है आपके साथ, मैं जाता हूँ। गए और फिर थोड़े समय के बाद क्या हुआ, फिर आवाज आया, हे राम जी, आवाज आया, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। तो फिर सीता जी को लगा कि नहीं राम जी बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को कहा कि नहीं आप जाओ बुला। लक्ष्मण को पता था श्री राम बहुत सक्षम है अपने आप की रक्षा करने की, तो ये कहीं कुछ खेल है इसमें। नहीं, सीता ने नहीं आप जाओ। तो फिर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, क्या लक्ष्मण रेखा लगाई और कहा कि इसके अंदर रहेंगे तो आप सेफ रहोगे, बाहर नहीं आना। लेकिन फिर उस जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार किया, रावण उनको अपहरण किया। यहां क्या है, इसके सीख क्या है, परमात्मा के जो श्रीमत है उसके लकीर के अंदर जितना हम रहेंगे हम सेफ है। कहीं ना कहीं वो मर्यादाएं हमने पार किया, उसको लांगा, तो फिर हम डेंजर जोन में आ जाएंगे। डेंजर जोन में फिर प्रोटेक्शन नहीं है। अभी वो लक्ष्मण रेखा के अंदर क्या है, श्रीमद क्या है हमारा। जैसे जैसे आप ईश्वरीय जीवन जब आप करते मतलब आगे बढ़ाते जाएंगे तो समझ में आने लगता है हर चीज गहराई से, वो श्रीमद क्या है। सबसे पहला श्रीमद ये है, अपने आप को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, है ना। वो सबसे पहला श्रीमद है और वो जब हम करते जाएंगे फिर धीरे 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 दूसरे भी बातें हमें समझ में आने लगता है, फिर वो हमारी सेफ्टी है, राइट। तो यहां से ये एक पक्का करते करके जाना कि परमात्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन अभी जुड़ना शुरू हुआ है उसको और बढ़ाना है और उसको गहरा करना है। और बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी कभी डिस्चार्ज होने नहीं देना है, बार बार उसको रिचार्ज करना है, है ना। और वापस जाने के बाद आप सेंटर पे जरूर जाएंगे तो और विस्तार रूप से 7 डेज कोर्स अगर किसने नहीं किया है 7 डेज कोर्स जरूर करेंगे। और वो फिर वहां वो स्टॉप नहीं होता, वो खत्म नहीं होता स्टडी। ये तो स्पिरिचुअल ज्ञान है ना, एजुकेशन है ये, वह खत्म नहीं होता। अभी तक हम हर रोज सुबह मुरली सुनते हैं ना, जब यहाँ क्लास चल रहा होता है नीचे मेडिटेशन हॉल में हर रोज मुरली चलता है 7 से 8 बजे तक ना, हर रोज हम पढ़ते हैं ना, हर रोज कुछ ना कुछ ज्ञान पड़ता है बुद्धि में। तो ताकि फिर पूरे दिन के लिए वो होमवर्क हमारा चलता है, तो इसीलिए ये हर रोज पढ़ने की आदत हमें डालने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है, सबसे अच्छा समय योग करने के लिए वो है सुबह का समय। अमृत वेला करे तो बहुत अच्छी बात है, 4 to 4:45 के अंदर अमृत वेला शुरू हो जाता है 2 बजे से, रात के 2 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है 2 से 4:45 बजे तक। तो उसके बीच में कभी भी आप आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आप अमृत वेले में योग नहीं कर पाए हैं, जब भी उठे 5 बजे उठे 6 बजे उठे जब भी उठे, पहले उठने के बाद पहले के 20 मिनट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उस समय आप केवल थोड़ा फ्रेश होकर के आप बैठ करके आप मेडिटेशन करते हैं, वो बहुत ही पावरफुल आप महसूस करेंगे। क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप उठते हैं आप बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, धीरे धीरे से उठेंगे। जैसे गाड़ी जब शुरू करते हैं ना, पहले फर्स्ट गियर में डलता है, फिर सेकंड गियर में डलता है, फिर फास्ट जाता है, तीसरे चौथे गियर में बाद में जाता है। पहले से गाड़ी जब शुरू करते हैं तुरंत हम चौथे गियर में नहीं डालते हैं, लेकिन आजकल होने लगा है, उठते ही चौथे गियर में चले जाते हैं, राइट। कब जाता है चौथे गियर में, उठते ही चौथे गियर में कब जाता है, नो, जब उठते ही चौथे गियर में तब जाता है जब आप लेट उठे हैं. आपको जाना है 8 बजे, आप 7:30 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, तो उठते ही घड़ी देखिए, अरे बाप रे, अभी उठते ही भागना शुरू कर दिया. अभी उठते जैसे गाड़ी शुरू करते ही चौथे गियर में जाएगा तो इंजन का क्या हाल होता है? इंजन का हालत क्या होता है? इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना. गाड़ी शुरू करते सारी रात वो गाड़ी कार ठंडा पड़ गया है. जैसे ही सुबह ऑन करते, यूजली डीजल गाड़ी जब शुरू करते हैं ना, कहते पहले गर्म करते हैं 5-10 मिनट तो उसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं डीजल गाड़ी तो. हाँ, लेकिन अपनी आत्मा की गाड़ी को भी तो हमें संभालना पड़ेगा ना, ये शरीर का. तो उठते ही जब हम एक्टिव मोड में चले जाते हैं ना, वह एनर्जी इतना कंज्यूम, इतना एनर्जी हम कंजर्व नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालें, और पहले जो 20 मिनट्स है वो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें. क्योंकि जब आप उठते हैं कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं होता. उस समय अगर आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, खुद के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो वो संस्कार है ना, उसको बहुत जल्दी आप चेंज करने में मदद मिलता है. जब आप सुबह सुबह मेडिटेशन करते तो फिर उसको पावर मिलती है. सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने में सुबह का समय बहुत ही पावरफुल है. उस समय बैठ करके आप या अच्छी बातें सुने, परमात्मा का ज्ञान सुने, या फिर योग करें, तो फिर वो बहुत ही पावरफुल रहेगा. और फिर बाद में सारा 24 आवर्स तो है ही है ना आपके पास, वो पहले जो 20 मिनट्स या हाफ एन आवर बहुत ही पावरफुल है. और उसके साथ साथ ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे शरीर को 3 चीजों की जरूरत है, एक है न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है शरीर को, नींद की जरूरत है शरीर को, और तीसरा है रेस्ट, एक्सरसाइज की जरूरत है. तीनों चीज अगर बराबर है तो बॉडी हेल्दी रहेगा. इसमें से थोड़ा भी कम हो गया तो गड़बड़ हो जाता है ना. ऐसे आत्मा को भी ये तीनों ही चीजों की जरूरत है ना. तो न्यूट्रिशियस फूड क्या है आत्मा के लिए? ज्ञान, ज्ञान की बातें. क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे ना, जैसे इनपुट है तो उसके आधार से हम सोचना शुरू करते हैं, है ना. ज्ञान की बातें न्यूट्रिशियस फूड है. तो इसीलिए ब्रेकफास्ट हमेशा हेवी कहते हैं करना चाहिए, हेवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ताकि फिर दिन भर में शरीर में वो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रहेगा, राइट. ऐसे ही सुबह उठते ही आत्मा को ज्ञान के ब्रेकफास्ट देना बहुत जरूरी है, ताकि फिर वो बातें दिन में हम कर्म में उसको हम यूज कर सकते हैं, राइट. ज्ञान की बातें बहुत जरूरी है. और योग कौन सा है? नींद, रेस्ट, रिलैक्सेशन, वो योग का काम करते हैं. और ये ड्रिल का भी काम करता है, क्योंकि हम आत्माएं फिर परम धाम जाकर के परमात्मा की शक्ति लेते हैं, ये करते हैं, तो वो ड्रिल का भी काम करता है, एक्सरसाइज का भी काम करता है. तो इसलिए ज्ञान और योग ये दोनों बहुत जरूरी है सुबह उठते ही. जब हम ये दोनों यूज करते हैं तो सारा दिन बहुत पावरफुल रहेगा. और दूसरा जो समय है, बहुत शक्तिशाली समय, वो कहते हैं निर्मल शाम का समय, जो 6:30 से 7:30 बजे का टाइम जो होता है. उस समय मंदिरों में आरती होती है. मंदिरों में सुबह भी आरती होती है, लेकिन शाम की आरती हो ना, ये समय होता है 6:30 से 7:30 के बीच में. बहुत ही अच्छा समय माना जाता है मेडिटेशन करने के लिए, वो भी ठीक है. और रात का समय जो आप सोने जाते हैं उसके पहले, आप उस समय भी सोने से 10 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले आप मेडिटेशन में बैठ करके फिर आप सोने जाएं। इसीलिए, लेकिन अभी रूटीन पूरा बदल गया है ना हमारा, रात को सोने से पहले सीरियल देखेंगे या फिर न्यूज देखेंगे, वही नेगेटिव सारा भर करके फिर सोएंगे तो वही सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा, वही प्रोसेस होता रहेगा। आप सीरियल देखिए, मना नहीं है, न्यूज देखिए, मना नहीं है, क्योंकि ये सब हमें इंफॉर्मेशन दुनिया में क्या हो रहा है ये देखना जरूरी होता है, ठीक है, देखिए, मना नहीं है, लेकिन सोने से 15-20 मिनट पहले स्विच ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ स्विच ऑफ करके, डिटैच हो करके, खुद के साथ कनेक्ट हो करके, बाबा के साथ कनेक्ट हो करके, उस कॉन्शियसनेस में रह करके फिर आप सोएंगे, योग निद्रा होगा, तो फिर नींद बहुत गहरी होगी और थोड़े समय में आपकी नींद पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये सिंपल टिप्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टिप्स नहीं है, सिंपल टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे आप देखना आपका लाइफ जो है बहुत ही चेंज हो जाएगा, पूरी तरह चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है। और दूसरी बात ये है, पहली बात क्या है, सोने के तुरंत बाद मेडिटेशन करना है, ज्ञान योग, थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुनना है सोने से पहले, कट ऑफ होकर के 15-20 मिनट मेडिटेशन में फिर सोना है। दूसरी बात यह है अन्न की शुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन। यहां आप सभी ने भोजन किया, राइट, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, टेस्टी तो था ही, लेकिन साथ साथ सात्विक, है ना। आईटी कॉन्फ्रेंस में लास्ट दिन एक भाई आते हैं, हम भोजन कर रहे थे डाइनिंग हॉल में, वो आकर के बोलते हैं कि दीदी यहाँ ना भोजन बहुत अच्छा था। मतलब बोला, अच्छा क्या अच्छा लगा? यहाँ तो मसाले जो डालते हैं ना कुछ अलग ही है यहाँ, तो ये टेस्ट ऐसे कैसे बनता है, रेसिपी कुछ मिल सकता है यहाँ का? मैंने बोला, रेसिपी कौन सा है, वही दाल है, वही सब्जी है, वही नॉर्मल वे में जो जैसे आप लोग बनाते हैं हम लोग भी वही मसाले यूज करते हैं, हाँ केवल प्याज लहसुन यूज नहीं करते हैं बस, उसके अलावा सब कुछ वैसे ही के वैसे है, तो वही रेसिपी है। नहीं नहीं, हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं आता है। तो मैंने कहा, हाँ ये योग में बनाते हैं ना, जो बनाते हैं यहाँ भोजन वो सात्विक योगी भाई बहने भाई यहाँ बनाते हैं, और जो वाइब्रेशन है भोजन बनाते समय वो वाइब्रेशन पॉजिटिव और पावरफुल वाइब्रेशन है, इसका टेस्ट है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं 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 कुछ रेसिपी चाहिए मुझे, रेसिपी चाहिए, उनके तसल्ली के लिए ठीक है। हमारा अपने किचन के भाई, उनसे मैं मिलाती हूँ आपको, तो चलिए आप मिलाए तो, लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं ये रेसिपी नहीं, कुछ तो सीक्रेट है आपके, कुछ तो सीक्रेट है। कुछ सीक्रेट नहीं है, बनाते समय जिस कॉन्शियसनेस के साथ हम बनाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम व्यर्थ सोचते हुए, नेगेटिव सोचते हुए भोजन बनाएंगे, उसकी एनर्जी वहां जाएगा ना। तो इसीलिए आजकल तो ट्रेंड हो गया है, घरों में किचन ही नहीं रखते हैं आजकल, आजकल तो आईटी प्रोफेशन में ज्यादातर करके ऐसा हो गया है, छोटे छोटे घर तो बड़े बड़े होते हैं, पानेट्री जैसा होता है, किचन बड़ा नहीं होता है आजकल, थोड़ा बहुत चाय कॉफी बनाने के लिए पानेट्री रखते हैं बस, लेकिन भोजन ऑर्डर करते हैं तीनों टाइम ऑर्डर बाहर का भोजन। तो हेल्थ का क्या होगा, हेल्थ शरीर का हेल्थ तो है खराब होगा ही, लेकिन आत्मा का मन की हेल्थ बहुत खराब हो जाता है। तो फिर छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, सहन की शक्ति नहीं है, झेलने की शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति पूरा खत्म हो जाता है ये बाहर के खाना खाने से। क्यों, कैसे, होटल के भोजन करने से मन के ऊपर क्या प्रभाव डालता है बताइए? क्यों प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव? आपके मां के हाथ का भोजन और मंदिर के प्रसाद के वाइब्रेशंस और होटल का भोजन, ये तीनों में अंतर है। अंतर है क्यों? मंदिर में जो भोग मिलता है उसमें क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि वो भगवान को ऑफर करके उस कॉन्शियसनेस में बनाया हुआ है, या भगवान के लिए बना रहे हैं, उसमें एनर्जी है। इसीलिए जब प्रसाद बांटते हैं ना, अगर कोई मान लीजिए तिरुपति गए या कोई धर्म कोई भी गए, तो वो अगर लेके भी आते हैं प्रसाद, थोड़ा थोड़ा भी देंगे ऐसे आंखों में लगा करके, फिर वो प्रसाद स्वीकार करेंगे, क्योंकि इतने वैसे प्रसाद में भी वो ताकत है। क्यों? कि उस कॉन्शियसनेस में बनाया हुआ है, भगवान को भोग ऑफर किया हुआ है, उसमें ताकत है, राइट? और माँ के हाथ का भोजन प्यार का बना हुआ है, प्यार से बना हुआ है। ये मैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से वो बना हुआ है वो भोजन, राइट? इसलिए वो एनर्जी है उस भोजन में। फिर कहते हैं ना, कोई कैसे भी अच्छा खीर बनाए, फिर भी कहते हैं मेरे माँ के हाथ का खीर जो है ना, उसका टेस्ट ही अलग था। वो इंग्रेडिएंट्स वही है, लेकिन प्यार उसमें नहीं है ना, माँ का प्यार का इंग्रेडिएंट वहां नहीं डला था ना, तो इसलिए वो प्यार के वाइब्रेशंस उसके उस भोजन में है। और होटल का भोजन पैसों के लिए वो भोजन बनाते हैं, कमाने के हिसाब से। तो भले वो कितना भी टेस्टी बनाए, बड़े बहुत अच्छा शेफ ने बनाया है वो भोजन, लेकिन इंटेंशन क्या है? पैसा है ना, तो वो इंटेंशन वो अलग होने के कारण से वो एनर्जी आत्मा को डिप्लीट कर देता है। और हर रोज वही भोजन कर रहे हैं तो आत्मा को पूरी तरह डिप्लीट कर देता है। इसलिए भोजन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। घर में दही चावल खाइए, कड़ी और खिचड़ी खाइए, लेकिन अपने हाथ का भोजन, अपने घर में बना हुआ भोजन अगर खाएंगे, उसके एनर्जी आप देखेंगे, आत्मा को आप उन्नति के लिए बहुत फायदा उसमें मिलेगा, है ना? तो बनाते समय उस कॉन्शियसनेस में, भोजन ग्रहण करते समय उस कॉन्शियसनेस में। वैसे तो कहते हैं ना, जब हम भोजन करने बैठते हैं तो शुक्रिया माने, नेचर के लिए धन्यवाद, भगवान के लिए धन्यवाद करके, ये तो मिला है करके। वो तो जब हम बच्चे थे तो वो सिखाया जाता था, लेकिन आजकल तो चलते फिरते टीवी देख करके, फिल्म देख करके हम भोजन कर रहे हैं, तो फिर उसका प्रभाव क्या डलता है ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये दो चीज है, क्या इनपुट ले रहे हैं उस पर आप जरूर ध्यान रखेंगे। इनपुट ये तीन चीजों से हम लेते हैं, इन आंखों से ले रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं इन आंखों से ले रहे, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, जो हम सुन रहे हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ रहा है, और जो हम भोजन ग्रहण करेंगे उसका प्रभाव मन पर पड़ रहा है। ये तीन दरवाजे हैं मन के लिए, है ना? तो इन तीन दरवाजों पर आपको पहरा देना पड़ेगा, है ना? सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ेगा कि कौन सा फिल्टर करके आप अंदर भेज रहे हैं, ताकि फिर यहां ये पावरफुल बनता जाए, यहां शक्तिशाली बनता जाए। अगर गलत चीज एंटर भी हो गया तो, लेकिन यहां विचारों से, उसको फिर निकाल देना है। संस्कार में जो नेगेटिव लेयर्स है वो तो है ही है, नेगेटिविटी है ना, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव हमें अंदर नहीं भेजना है। अभी इतना कुछ काम बाकी है यहाँ संस्कारों को परिवर्तन करना, तो एक्स्ट्रा नेगेटिविटी अंदर जाने नहीं देना है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे और निरंतर ये अभ्यास करते जाएंगे तो एक साल में आप देखना हमें बहुत अंतर दिखाई देने लगता है। ठीक है, ओम शांति। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ। जब आप लाइफ के सिग्नल्स को आप देखते रहिएगा, अगर आप सुबह उठ करके जब मेडिटेशन करते हैं तो आप, कोई प्रश्न है आपके अंदर, इसके लिए मुझे आंसर चाहिए, राइट, इसके लिए मुझे रेमेडी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो ये जैसे परमात्मा को बोल करके हो गए। तो अगर आप वो जो मिल रहा है सिग्नल वो अगर आप कैच नहीं कर पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट ऑब्जर्व द सिग्नल्स अराउंड इन योर लाइफ। कोई ना कोई आकर के किसने कुछ बोल दिया, उसके रिलेटेड कुछ आप पढ़ लिया न्यूज़पेपर में, कुछ ना कुछ सिग्नल्स लाइफ हमें देता है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद दैट। थोड़ा बहुत ध्यान से अगर देखेंगे वो आपको मिल जाएगा। हम कहते हैं सुबह की मुरली जब हम सुनते हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं मुरली में, तो हमें उस दिन के लिए हमने जो सोचा था उसका उत्तर हमें मिल जाता है ना। तो ये बातें हैं। हाँ जी, उनको मोटिवेशन की जरूरत है, और फिर अगर उनको एहसास कराए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी अलग है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, राइट। ड्यूटी कॉन्शियसनेस होंगे तो वो कहते हैं कि ठीक है 9 से 5 है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज ए टीचर एज ए प्रोफेसर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्या ड्यूटीज से बढ़कर के मैं कुछ प्रोवाइड कर सकता हूं, कर सकती हूं बच्चों की उन्नति के लिए, उनको वो एहसास कराना पड़ता है। वो फिर उसके लिए ट्रेनिंग, उनके लिए सेशंस रख सकते हैं, तो वो फिर वो कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात है, आप मेडिटेशन सीखे हैं तो फिर वहां जब जाते हैं आप, थोड़ा पहले जाकर के वहां 15-20 मिनट आपके कैबिन, प्रिंसिपल का कैबिन होगा आपका, आपका कुर्सी होगा, तो वहां एटलीस्ट 5-10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें जल्दी जाकर के, ताकि फिर मेडिटेशन इस रीति से करें कि परमात्मा से शक्ति लेकर के पूरे आपके स्कूल को जैसे वो एनर्जाइज आप कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि हमें वो करने के लिए इसमें विश्वास रखना होगा कि पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल देन नेगेटिविटी, है ना। जब लगातार हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते जाएंगे नेगेटिविटी दबता जाएगा, खत्म होता जाएगा, है ना। तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं पूरी तरह आंख खोल के रखने ही रखना, और ये जरूरी भी नहीं है पूरी तरह, आप अगर आधा घंटा मेडिटेशन में प्लीज बैठिए, आधा घंटा अगर आप यू मेडिटेशन में बैठे हैं पूरी तरह ऐसे खोल करके आधा घंटा आप मेडिटेशन ना करें, बी वेरी नेचुरल, क्योंकि आंख खोल के रखने में वो थोड़ा सा ध्यान फिर आंख खोल करके रखने में चला जाता है, तो कभी कभी बीच में बंद भी कर लिया, कभी खोल दिया, इट्स ओके, लेकिन पूरा फोकस हमारा यहां और यहां होना चाहिए। बीच बीच में बंद भी कर लिया इट्स ओके, कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे बंद करता है, बी वेरी नेचुरल, है ना। और दूसरी बात, जब खोलना है आप पूरी तरह नहीं खोलिए, हाफ ओपन, हाफ ओपन, इसीलिए जैसे अभी कोई भी चित्र देखते हैं महात्मा बुद्ध के चित्र, गुरु नानक जी के चित्र, फोटोज देखते हैं तो उनका आंख पूरा तरह खुला नहीं है, योगियों के आंख पूरी तरह खुली नहीं होती है, हाफ ओपन रहता है, हाफ ओपन वो सहज है, इट्स नॉर्मल, और आप आंखों पर प्रेशर नहीं डाल रहे, राइट? और उसका मतलब ये है कि आप देखते हुए नहीं देख रहे हैं, मैं देख रही हूं लेकिन उस पर अटेंशन नहीं है। जैसे कई बार आप इतने एनग्रॉस्ड है अंदर, कुछ सोच में इतने एनग्रॉस्ड है, आपके आंखें खुले हैं, देख रहे हैं, लेकिन अटेंशन नहीं है। कोई आया गया, आप आंखें तो देख रही है लेकिन ध्यान नहीं है, कोई आया गया, है ना? यू आर सो मच एनग्रॉस्ड इनसाइड, है ना? तो ये स्थिति है मेडिटेशन में भी। मैं अंदर इतना एनग्रॉस्ड हूं अपने आप को देखने में, करने में, देखते हुए भी अटेंशन नहीं है, वो स्थिति होनी चाहिए, है ना? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और है? ओके, चलिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी जिंदगी बहुत अच्छा रहे, परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित और सशक्त, बी हैप्पी। और हमेशा याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? कई बार ऐसा फील होता है ना कि आजकल लोनलीनेस बढ़ गया है, भीड़ में रहते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, तो इसीलिए अभी कभी आप अकेले नहीं हैं, ये पूरा परिवार आपके साथ है। और जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ी किसी भी हेल्प की, किसी भी मदद की, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। सेम क्वेश्चन, हाँ, रहने को तो मिलेगा लेकिन प्रोग्राम से, अगर कोई इवेंट्स चल रहा है तो इवेंट्स में, जैसे अभी कॉन्फ्रेंस चला तो उस रीति से आप आकर के उसका लाभ जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप अपने सेंटर के थ्रू। ओके, हम पूरे ब्रह्म कुमारी संस्था जो है नेटवर्क से काम करते हैं, वी डोंट वर्क एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल, नेटवर्क है हमारा पूरा। तो इसीलिए अगर आपको हेडक्वार्टर्स में आना है, आपके लोकल सेंटर के थ्रू आप कभी भी आ सकते हैं, राइट? ओके, चलिए 2 मिनट मेडिटेशन में बैठते हैं फिर।